मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 9 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे कल ही के विषय को थोड़ा सा दूसरे तरीके से या दूसरे आयाम के साथ बात करना चाहूंगा, और अगर इसे आप शीर्षक ही देना चाहें तो मैं आपसे बात करूंगा कि अभी जो सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए जो कमजोर है आर्थिक रूप से आरक्षण की जो बात कही है, जिसका विधेयक बकायदे संसद में पेश भी किया जा चुका है लोकसभा में, उसके दूसरे डायमेंशंस क्या है। दूसरे डायमेंशंस का मतलब है कि उसमें लोकतंत्र कहां है, उस लोकतंत्र को हम पहचानने की कोशिश करेंगे और तभी मुझे लगता है कि सही मायने में हम डेमोक्रेसी को समझ भी सकेंगे, और यहीं से फिर आपको पॉलिटी भी समझ में आएगी। जो सिविल सर्विस के मेंस का सेकेंड पेपर है उसकी जो सबसे बड़ी चुनौती है, शायद इस लेक्चर को सुनने के बाद उसके रियल चुनौती को आप पहचान सकेंगे, और इसके साथ ही साथ आपको यह भी महसूस हो सकेगा कि दूसरे टॉपिक्स को आपको कैसे समझना चाहिए, कैसे एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक न्यूज के बारे में आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा जो बहुत ही सरल सी है, इन्फॉर्मेटिव टाइप में आपको बताना चाहूंगा। लोकसभा बकायदे संसद में नागरिकता संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा चुका है, लोकसभा में पारित भी हो गया है, नागरिकता संविधान संशोधन विधेयक। मैंने कल के लेक्चर में आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि जैसे ही इसको पेश किया गया है वैसे ही असम गण परिषद ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लिया, के लिए जो उससे अलग हो गया, समर्थन की बात तो हम न करें, मतलब उसने अपना नाता तोड़ लिया है। असम गण परिषद जो आसाम की बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़ी, बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, और एक समय वो सत्ता में भी रही है 85-86 के समय में, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा गठबंधन दोनों सरकारों दोनों पार्टियों का था, वो टूट गया। कारण क्या था? कारण यही नागरिकता संविधान संशोधन विधेयक था। अब आप देखिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी, असम गण परिषद ने अपने को अलग क्यों किया, उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, थोड़ा सा मैप की आपको मदद लेनी होगी। न्यूज में आपने सुना कि तीन देश के नागरिक, स्पेशली ये तीन देश आप याद रखिएगा क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में आपको इसी तरह से उलझाने की कोशिश की जाती है, राइट? तीन देश के नागरिक, उसमें एक है पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा अफगानिस्तान। मालूम है सिविल सर्विस में आपको कैसे उलझाया जाएगा, इसमें पता लगेगा कि म्यांमार को भी शामिल कर दिया है, और आपके दिमाग में फिर ऐसा चलेगा कि हां यह म्यांमार से तो रोहिंग्या शरणार्थी भारत में भी आ रहे थे, बांग्लादेश में भी आ रहे थे, उनकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के साथ चल रही है, तो हो सकता है कि ये म्यांमार के लिए भी हो। बस वहां आपको यूपीएससी जो है फंसाने की कोशिश करती है, और यह देखता है कि यूपीएससी ये देखती है कि स्टूडेंट सही मायने में कितना सतर्क है, उसके दिमाग में कैसे चीजें स्पष्टता के साथ मौजूद रहती हैं। तो इसलिए ऐसे जहां भी अवसर आते हैं आपको चाहिए कि आप थोड़े से सतर्क हो जाएं, जो तथ्य हैं उनको बार बार रिवाइज करें, समय समय पर रिवाइज करें, और बेहतर होता है कि कहीं नोट कर लें। देखिए अभी मैं तीन देश के आपको नाम बता रहा हूं, आपको बहुत आसान सा लग रहा होगा कि यार इसमें नोट करने की क्या जरूरत है, या ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तत्काल आप उसका उत्तर दे रहे हैं। कल्पना करके देखिए कि महीने दो महीने के बाद अगर ये पूछा जाए और उसमें म्यांमार जैसा आपको विकल्प दे दिया जाए तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं थोड़े से चक्कर में पड़ जाएंगे, और फिर भाषा उसकी कुछ इस तरीके की होगी, उलझाव कुछ इस तरह से भूल भुलैया जैसे तैयार किए जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार हां ये भी हो सकता है। बस वही आप समझ लीजिए कि गड़बड़ी की आशंका को आपने आमंत्रित कर लिया। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहां से हमारे यहां शरणार्थी बहुत आए हैं, उसका कारण है, उसमें अगर आपने हमारे राज्य गृहमंत्री जी का फिर मतलब वक्तव्य सुना होगा तो उसने बताया कि अपने अपने देश में इन लोगों ने जो अभी हमारे यहां आ गए हैं कहीं ना कहीं एक तरह से धार्मिक अत्याचार कह लीजिए या धार्मिक विभेद कह लीजिए उसके शिकार हुए हैं, चाहे कहीं इस्लाम के कारण हुए हों, कहीं और दूसरे कारणों से हुए हों, और वो भागकर भारत आ गए हैं, राइट? तो अब ये जो भारत आ गए हैं, भारत में उन्होंने शरण ली है, अभी तक का यह था कि जो विधेयक लाया गया था उसमें 11 साल का, अब उसको 6 साल कर दिया गया कि वो 6 साल से भारत में रह गए हैं, और जो दूसरी स्थितियां होंगी वो संशोधन विधेयक के पॉइंट्स होंगे, आपको बाद में पढ़ने को मिलेंगे। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा पॉइंट है तीन देशों के नाम के बाद, वो है धार्मिक उत्पीड़न। धार्मिक उत्पीड़न जो अपने अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं, भारत उनकी नागरिकता, उन्हें नागरिकता देने के बारे में विचार करेगा। अब आप देखिए कि नागरिकता देने के बारे में जो विचार करेगा, आपने अगर गृहमंत्री के वक्तव्य को बहुत अच्छे से सुना हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य केंद्र सरकार से रिकमेंड करेगी कि भाई इनके ये बायोडाटा हैं और आप इन्हें नागरिकता देने के बारे में विचार कीजिए, और फिर केंद्र सरकार उन्हें नागरिकता देगा। याद रखिए कि राज्य सरकारें नागरिकता नहीं दे सकती, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता की बात है। एकल नागरिकता, वो हमारे यहां केवल देश का नागरिक होता है। अमेरिका में तो दोनों के नागरिक होते हैं, आप अपने देश के भी नागरिक होते हैं और अपने राज्य के भी नागरिक होते हैं। इसी के साथ ही मैं एक सजेशन आपको और भी देना चाहूंगा फ्रेंड्स, और वो ये कि चूंकि ये नागरिकता संविधान संशोधन विधेयक आया है, इसका इससे पहले 95 में बना था ये, तो आपको जो ओरिजिनल हमारा नागरिकता अधिनियम है उसको बकायदे जान लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए कि हमारे यहां क्या व्यवस्थाएं इसके बारे में की गई है, क्योंकि जब तक हम उस पृष्ठभूमि को नहीं जानेंगे तब तक अभी जो संशोधन विधेयक है उसकी समीक्षा नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी अखबारों में थोड़ी बहुत बातें आपको एडिटोरियल कमेंट्स के तहत डेफिनेटली पढ़ने को मिलेंगी। फ्रेंड्स आइए अब मैं मुख्य विषय के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के बारे में कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की थी, और मैंने आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि इस टॉपिक को एग्जामिनेशन के लिए अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से वर्ग बना लेने चाहिए, और बकायदे अब इस पर बहस होगी, उस पर लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे, जो बुद्धिजीवी हैं वो अपने अपने ढंग से आर्टिकल्स लिखेंगे, संविधान विशेषज्ञ अपने ढंग से बातें करेंगे, तो वहां से आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे और आपको चाहिए कि आप पॉइंट्स नोट करते जाएं, तो इस तरह से आपका एक अच्छा सा टॉपिक तैयार हो जाएगा। मैं आज यहां आपसे इसमें जो लोकतांत्रिक चरित्र है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है कि हमारी संसद है, लोकसभा की अपनी सदस्य संख्या है, राज्यसभा की अपनी सदस्य संख्या है, जिसे हम लोगों ने चुनकर भेज दिया है, और वो वहां जाकर कुछ भी करते रहते हैं, कोई भी विधेयक पारित कर देंगे, कुछ भी बात कहेंगे। फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ऐसा समझते हैं तो मुझे लगता है कि हम डेमोक्रेसी को सही तरीके से नहीं समझते हैं। आमतौर पर आप लोगों के बीच जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, तो वो क्या कहते हैं कि हमारा क्या अधिकार, नागरिक ये कहता है हमारे अधिकार ही क्या है, एक बार हम वोट दे देते हैं सरकार बन जाती है, 5 साल के बाद वो फिर वोट मांगने आते हैं, फिर हम दे देते हैं, फिर किसी की सरकार बन जाती है, वोट देने के बाद हमारे हाथ कट जाते हैं, हमारे हाथ में होता क्या है। नहीं, उन नागरिक के हाथ में बहुत कुछ होता है, और सच पूछे तो ये जो सामान्य वर्ग को जो आरक्षण देने की बात हो रही है, देखिए मैं सामान्य वर्ग को आरक्षण कह रहा हूं तो उसका मतलब समझ लीजिए कि सामान्य वर्ग में वे जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, कमजोर हैं, है ना, उनको आरक्षण देने की बात है। तो क्या सही मायने में, देखिए पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली वह एक जगह दिखाई दे रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले एक, आप जिस अखबारों में भी पढ़ेंगे कि एक पॉलिटिकल गेम खेला है, अखबार ऐसा लिख रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, अब उस कारण पर जाइए तभी हम लोकतंत्र को समझ पाएंगे। अदरवाइज ठीक है, राजनीतिक गेम चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और रीजनल पार्टीज हो, सब अपने अपने ढंग से खेलते ही हैं और यही लोकतंत्र है। अब सबरीमाला मंदिर के मामले में देखिए केरल में क्या हो रहा है, तो ये तो लोकतंत्र में चलेगा ही चलेगा। आप अमेरिका में देखिए वहां क्या हो रहा है, ओबामा प्रशासन ने कुछ किया, ट्रंप जी आकर के कुछ कर रहे हैं, वो ओबामा केयर हेल्थ को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वही सब चल रहा है ना। सवाल उसका नहीं, सवाल यह है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है, क्या उसके पीछे लोग हैं, या विशुद्ध रूप से ये केवल राजनीतिक निर्णय है, या कि प्रधानमंत्री या उनके कैबिनेट के मेंबर्स या उस पार्टी विशेष के लोगों के दिमाग में ऐसे कोई फितूर सूझा और उन्होंने ये कदम उठा लिया, क्या वो ऐसा कर सकते हैं, खासकर डेमोक्रेसी में जहां उन्हें 5 साल के बाद फिर से लोगों के सामने जाना है। मित्रों ऐसा नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं, कोई भी ऐसा करे, तो आप मान करके चलिए कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मान रहे हैं। हो सकता है कि गलत कैलकुलेशन की वजह से वो कुछ ऐसा कदम उठा लें, मतलब उनकी दूरदृष्टि उतनी सही नहीं थी, तात्कालिक लाभ की वजह से वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं, तो उन्हें तो नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन सामान्यतया आप मान करके चलिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी करती हैं, चाहे आप उसे राजनीति का ही नाम क्यों न दे दें, दरअसल वो जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, जनता की जो भावनाएं हैं, उनको ध्यान में रख करके करते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, और वो इसे भांप जाते हैं, बकायदे भांप जाते हैं। यही तो रिप्रेजेंटेटिव का काम है, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, क्योंकि वो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के बीच मूव करते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की उनकी जरूरतें हैं, उसको वो समझते हैं, ब्यूरोक्रेट्स उसको नहीं समझ पाते। उदाहरण के तौर पर अब आप देखिए, मैं दो बातें आपके सामने रख रहा हूं। कुछ समय पहले तक आपने देखा कि गुजरात में बकायदे जो पटेल वर्ग था वो आरक्षण की मांग कर रहा था, एक जाट वर्ग वो आरक्षण की मांग कर रहा था, गुर्जर वो आरक्षण की मांग कर रहे थे, यानी कि सभी आरक्षण ये वर्ग आरक्षण की मांग कर रहे थे, और इन्होंने बकायदे आंदोलन भी किए और जबरदस्त रूप से आंदोलन हुए, आपको ध्यान होगा, राइट। इसका मतलब है कि देश के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो अपने लिए भी आरक्षण चाह रहे हैं। आरक्षण क्यों चाह रहे हैं, आरक्षण का पर्पस क्या है, कि उन्हें जीविका का साधन मिले, सरकार में उन्हें नौकरी मिल जाए और शिक्षण संस्थानों में उन्हें एडमिशन मिल जाए, राइट। तो इसके केंद्र में अगर आप देखेंगे तो समस्या आपको लगेगी आरक्षण की नहीं, बल्कि मूलतः रोजगार की है, नौकरी की है, पहली बात इससे यह सिद्ध हो रहा है। और सरकार अगर अब आरक्षण देने के बारे में सोच रही है, इसका मतलब है कि सरकार को लग रहा है कि वास्तव में जितनी नौकरियां दी जानी चाहिए, डिमांड में है, दी जानी चाहिए की बातें, जितनी डिमांड में है हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी तीन राज्यों में चुनाव हुए, राइट, तीनों राज्यों में, अभी इधर की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्थ इंडिया की, दो और राज्यों में हुए थे, लेकिन हम इधर की बात कर रहे हैं ना, अभी फिलहाल हम तेलंगाना और मिजोरम की बात नहीं कर रहे हैं। तीनों राज्यों में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तीनों राज्यों में उनकी पार्टी हार गई और कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई। अगर आपने उस समय के न्यूज़पेपर्स पर ध्यान दिया हो, और इनफैक्ट इस तरीके के बातों पर थोड़ा सा ध्यान भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ते समय देना चाहिए, मैंने डेली ऑडियो लेक्चर में इसकी चर्चा की थी, मुझे याद आ रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये बताया गया, जो भी हमारे राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उन्होंने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी से कुछ वर्ग नाराज हैं, कुछ वर्ग नाराज हैं। सबसे ज्यादा धक्का भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में शहरों में लगा, और ये कहा गया कि शहर में जो सवर्ण लोग हैं, यानी कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो बीजेपी से धीरे धीरे नाराज चल रहे हैं और वो धीरे धीरे दूर हट रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको रोजगार के साधन नहीं मिल रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही है, डीमोनेटाइजेशन ने उनकी लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों, सूक्ष्म उद्योगों को खत्म कर दिया, जहां इनकी थोड़ी सी रोजी रोटी चलती थी, तो इस तरह की बातें होने लगी। इसका मतलब यह है कि ये जो तीन राज्यों के चुनाव हुए, लोकतंत्र ही हुआ ना चुनाव हुए, तो सीधे तो केंद्र सरकार से कुछ नहीं कहा जा रहा है, न कोई प्रतिवेदन भेजे जा रहे हैं और न कोई दस्तखत अभियान चलाया जा रहा है कि साहब हमें आरक्षण चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनमें सेंस होता है कि वो चीजों को भांप लेते हैं कि लोग चाह क्या रहे हैं। इनफैक्ट नो डाउट आप कह सकते हैं कि ये राजनीति है, चुनाव आने से पहले ही ये हो रहा है, आप कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी आपके पास तथ्य हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कहीं न कहीं अपने आप में जो डेमो का मतलब है लोगों की इच्छा और आवश्यकताओं को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों की ये रिक्वायरमेंट है। अब ये बात अलग है कि रिक्वायरमेंट को आप नाम क्या देते हैं, कि लोग आरक्षण चाहते हैं या लोग नौकरियां चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, ये अब आपको देखना है। लेकिन आवश्यकता उनकी डेफिनेटली यह आर्थिक है, जो अभी तीन राज्यों में हुए चुनाव से आप यूं कह लीजिए कि रिफ्लेक्ट हुई है। दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो तीन राज्यों के चुनाव हुए उसे एक प्रकार से ये जो सामान्य वर्ग के आरक्षण है उसके मांग के रूप में स्वीकार किया गया, जो गलत नहीं है और यही डेमोक्रेसी है। तो मित्रों मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी को इतना इनलार्ज करके हमें देखने की आदत डालनी होगी, तभी हम जनरल स्टडीज मेंस का जो सेकेंड पेपर है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के बहुत अच्छे उत्तर दे सकेंगे। और ये मत समझिए कि ये कोई बहुत कठिन काम है, अगर एक बार डेमोक्रेसी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गई, प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आ गई, तो बड़े आराम से आप उसकी गहराई में जा सकेंगे। और मैं यहां अपने क्लास के स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने स्पेशली ध्यान होगा आपको 2-2.5 घंटे जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि डेमोक्रेसी को समझाने में लगाए थे कि डेमोक्रेसी कैसे शुरू होती है और एक गांव में कैसे छोटी सी घटना घटती है और कैसे जो नागरिक हैं उनके हाथ में कितना जबरदस्त अधिकार आ जाता है। आप उस घटना को, एक घटना के माध्यम से मैंने आप लोगों के सामने बात रखी थी, अगर आप उसे याद कर लेंगे तो मेरी आज की यह बात आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, उनके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त भी करना चाहूंगा। नमस्कार।